मैं मुबल्लिग बनूं सुल्तों का, खूब चर्चा करूं सुल्तों का, हो करम बहरे खाके मदीना।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله दुरूद पाक की फजीलत सरकार आली वकार महबूब रब्बे गफ्फार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आफियत निशान है। क़यामत के रोज अल्लाह पाक के अर्श के सिवा कोई साया न होगा। तीन शख्स ऐसे अल्लाह पाक के अर्श के साए में होंगे। नंबर एक, वो शख्स जो मेरे उम्मती की परेशानी को दूर करे। नंबर दो, मेरी सुन्नत जिंदा करने वाला हो। और नंबर तीन, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला हो। ये तीन तरह के खुश नसीब वो लोग हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया न होगा। ये खुश नसीब जब आएंगे तो रब्बे काबा अपनी रहमत से इन्हें अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। अल्लाह करीम हम सबको ये तीनों काम करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला अलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। आज अल्लाह के औलिया और औलिया में से वो के जिन्हें अल्लाह ने बचपन से ही विलायत अता फरमाई है, उनमें से चंद का जिक्र खैर हम इस बयान में सुनेंगे। और बेशक जब ये जिक्र हम पढ़ते हैं बयान करते हैं तो इसमें भी हमारे पीराने पीर रोशन जमीर हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दिस सिर्रहु रब्बानी, आपका तसव्वुर यूं सबसे पहले भी आता है। वलियों के सरदार भी हैं और विलायत भी ऐसी कि आप भी मादरजाद यानी पैदाइशी अल्लाह के वली थे। विलायत ये रब ताला की अता है। विलायत कस्बी नहीं वहबी है, रब की अता है। और हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप जब पैदा हुए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस रात जिलान शरीफ में जितने भी बच्चों की विलादत हुई, मुन्ने की लाश रिसाले में अमीर अहले सुन्नत लिखते हैं कि 1100 बच्चे पैदा हुए, सब के सब लड़के पैदा हुए और सबको अल्लाह ने मर्तबा विलायत अता फरमाया है। जब हुजूर गौसे आदम रजी अल्लाह तआला नो आपकी विलादत हुई तो गोया के हर तरफ हर मां की गोद में खुशी ही खुशी, लड़के पैदा हुए और वो भी अल्लाह के वली, क्योंकि ये उस शब में पैदा हो रहे हैं जिस शब में इमामुल औलिया दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। और आप चूंकि रमजानुल मुबारक का पहला ही दिन था, खुद आपकी वालदाए माजदा सैदतुना उम्मुल खैर फातिमा रहमतुल्लाह ताला अलैहा फरमाया करती थी, मेरा बेटा अब्दुल कादिर पैदा हुआ तो रमजानुल मुबारक के दिन में मेरा दूध नहीं पीता था। दिन में रोजे की हालत, और फरमाया आइंदा रमजान जब शुरू हुआ तो चांद गुबार की वजह से, गर्द आलूद मौसम की वजह से नजर ना आया। लोग मेरे पास दरियाफ्त करने के लिए आए तो इनकी वालदा ने जवाब दिया, आज मेरी गोद के चांद यानी अब्दुल कादिर ने मेरा दूध नहीं पिया है। जिससे ये मशहूर हुई बात कि सैयदों का बेटा अब्दुल कादिर वो रमजान में दिन के वक्त मां का दूध भी नहीं पीते। ऐ आशिकाने गौसे आजम पीराने पीर, आप बचपन में मां की गोद में, अब इस उम्र के अंदर भी आपका रमजान का कोई रोजा ना छूटा तो मैं और आप सब नियत करें इंशाल्लाह हम भी रमजान का कभी रोजा नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। रोजों से वैसे ही प्यार होना चाहिए, बिलखसूस अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया तो नफली तौर पर रोजों की इतनी फजीलतों को बयान करते हैं और तरगीब देते तो ये इसलिए कि जो आदमी नफिल रोजा ना छोड़े वो तैयार इतना हो जाए कि रमजान का रोजा छूटना तो उसके तसव्वुर में ही ना आए। अल्लाह करीम हमें इस्तिकामत अता फरमाए। आप अपनी वालदा माजदा के पेट में थे तो जबी से आपके यहां करामात का जहूर होने लगा। आपकी मां वालिदा खुद बयान करती हैं, कहती हैं कि जब आपकी वालदा को छींक आती और उस पर वो अल्हम्दुलिल्लाह कहती तो पेट में ही जवाबन गौसे आजम यरहमों के ला कहकर जवाब देते थे। जवाब आप देते थे चीख का जवाब। ये कई इस्लामी भाई सुनते हुए समझते हुए लेकिन सवाब पर नजर नहीं है, अल्लाह की रहमत पर नजर नहीं रखते और सुस्ती कर जाते हैं इसमें, ये भी नियत करें जैसे ही किसी को छींक आएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में हम यरहमुकल्लाह का जवाब देंगे इंशाअल्लाह। मर्द को छींक आए तो जवाब देना है यरहमुकल्लाह। और अगर घर में आपकी अहलिया या घर के किसी महारिम में से किसी को छींक आती है और अल्हम्दुलिल्लाह वो कहे तो जवाब देना है यरहमु किल्ला। क्या जवाब देना है? किल्ला। जब मर्द को जवाब देंगे तो यरहमु कल्ला जबर के साथ। तो आप यूं और फरमाया कि जब ये पैदा हुए तो दुनिया में जलवा घर हुए उस वक्त गौसे पाक के होंठ हरकत कर रहे थे, तो कहा इस आवाज को सुना गया तो दुनिया में तशरीफ आवरी इनकी हुई है, जबान पर अल्लाह अल्लाह की आवाज जारी थी, अल्लाह का जिक्र करते हुए आप जो है वो पैदा हुए हैं। सुभान अल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे इस्लामी भाइयों, पीरों के पीर रोशन जमीर पीर दस्तगीर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप ऐसे मादरजात वली और भी कई ऐसे बुजुर्गान दीन औलिया जिनके जिक्र किताबों में मिलते गए, और ऐसी खवातीन औरतों के बारे में कि जो अल्लाह की वलियां थी और बचपन में ही रब ने उन्हें अपनी विलायत का मर्तबा अता फरमा दिया। इनमें तस्करा हजरत बीबी मरियम रहमतुल्लाह की ताला अलैहा, कुरान पाक के अंदर सूरह आले इमरान इसके अंदर बयान है कि इमरान की बीवी, ये इमरान इनके बारे में कि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम वो और ये हजरत इमरान ये दोनों आपस में हम जुल्फ थे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी मरियम रहमतुल्लाह ताला अलैहा, उनके वालिद वो थे हजरत इमरान, और उनकी बीवी थी अहलिया थी हजरत हन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैहा। इनकी जौजा ने मन्नत मानी, एक तवील अरसा हो गया शादी को, औलाद नहीं थी, तो जब औलाद नहीं थी तो एक मर्तबा कहीं से इनकी वालदा गुजरी तो देखा तो एक छोटी सी चुड़िया जो है वो अपने बच्चों को दाना खिला रही है, तो दिल में ख्वाहिश पैदा हुई मेरा भी कोई बच्चा हो उसे मैं भी खिलाऊं पिलाऊं, तो मन्नत मानी और ये शौक पैदा हुआ कि मेरे यहां औलाद हो, तो आपने जो है वो ये मन्नत मानी कि मेरे यहां जो बेटा पैदा होगा उसे मैं अल्लाह की राह में आजाद कर दूंगी, वक्फ कर दूंगी, वो मेरा बेटा पैदा होने वाला उसे बैतुल मुकद्दस के लिए ऐसा वक्फ करूंगी कि वो बस अल्लाह के घर की खिदमत करता रहेगा, उसे वक्फ कर दूंगी, यहीं रहेगा उलमा के पास, और बैतुल मुकद्दस के अंदर बड़े बड़े अकाबिरीन उलमा और उनमें से कई जो अंबिया की औलादों में से वो वहां मौजूद हो, तो कहा उनके पास उस बेटे को छोड़ूंगा। चुनाचे ये मन्नत तो मानी, और अल्लाह की शान के ये उम्मीद से भी हुई और पेट में बच्चा है मन्नत भी मान ली। तो जब ये मन्नत हजरत इमरान को पता चली तो उन्होंने कहा देखिए मन्नत तो आपने जो है वो मान ली है, अगर बेटी पैदा हुई तो फिर क्या होगा, यानी लड़कियों को वक्फ यूं नहीं छोड़ा जाता था, लड़की को यूं छोड़ा भी नहीं जा सकता, तो अगर बेटी पैदा हुई तो फिर क्या करोगे। खैर इत्तिफाक ऐसा हुआ बीबी मरियम के पैदा होने से ही कुछ महीने पहले इनके वालिद हजरत इमरान का इंतकाल हो गया। अब पीछे उनकी जौजा हजरत हन्ना थी, और पैदा जब हुई तो वो बीबी मरियम हुई। अब जब ये पैदा हुई तो इनको ये अफसोस लायक हुआ, इस बात पर अफसोस नहीं कि बेटी पैदा हुई, नहीं, बल्कि जो मन्नत की तकमील थी कि मेरी मन्नत पूरी नहीं हो पाएगी, मैंने ये मन्नत मानी थी कि बैतुल मुकद्दस छोड़कर आऊंगी और वो वहां पर रहकर जो है वो अब अल्लाह के घर की खिदमत करेगा, लेकिन ये मेरी मन्नत अब पूरी नहीं हो रही, तो इस पर इन्हें अफसोस हुआ कि अब ये कैसे पूरी होगी। तो ये अपनी बेटी को ही लेकर और उलमा के पास जो गए, वो उनमें हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, आप उनके सामने रखा मसला कि मैंने मन्नत मानी थी, अब ये बेटी है। तो मैंने शुरू में अर्ज किया कि ये आपस में जो है हम जुल्फ थे हजरत इमरान और हजरत ज़करिया, और इनके यहां जो इनकी बीवियां थी वो बहनें थी। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, आपने कहा कि ऐसा करें ये बेटी मेरी किफालत में दे दें, और चूंकि मेरे निकाह में इसकी खाला मौजूद है तो यहां पर यूं मेरी निगेबानी में रहेगी और यूं जो है वो इसे अपने पास जो है वो रखा जाए। तो इस पर दीगर उलमा और भी जो थे तो वो कहने लगे नहीं, इसके लिए कुरानदाजी की जाए कि इस बच्ची की किफालत कौन करेगा और करनी वही। तो कुरा अंदाजी की गई, पर्चियां डाली गई, उस वक्त के हिसाब से कुरा किया गया। तो उस कुरा अंदाजी के अंदर नाम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का आ जाता है। तो वो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की किफालत में आ गई आपके पास। आपने एक उनके लिए जो है वो कमरा, एक मेहराब कमरा जो है वो बना दिया और उस बच्ची को वहां रखा, उसके अलावा वहां कोई ना जाता था। खाने पीने जरूरियात के कुछ सामान आप देते, वापसी पर तमाम दरवाजे जो है वो बंद होते। जब आप खाने पीने का सामान लेकर वहां पहुंचते तो एक अजीब मामला आपने देखा। बचपन में अभी मरियम रहमतुल्लाह ताला अलैहा, वो अभी छोटी सी बच्ची है बचपन में, लेकिन आपने देखा कि उनके उस मेहराब के अंदर बेमौसम का फल आता है, गर्मियों में सर्दी का आता है, सर्दियों में गर्मी का फल आता है। तो वो ऐसे ही जैसे हम बच्चों से कलाम करते, वो ऐसे ही कलाम करते हुए बच्ची से ये कहा, कौल या मरियम अन्नाला की हादा, मरियम कहां से आता है? तो बीबी मरियम बचपन बिल्कुल छोटी सी बच्ची, अल्लाहु अकबर कुरान फरमाता है, उन्होंने बिल्कुल वाज़े ज़बान के साथ बोलते हुए जवाब दिया, कालत हुआ मिन इंदिल्ला इन अल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब। उस बच्ची ने कहा ये मेरे रब की तरफ से आता है और रब जिसके लिए चाहे बगैर हिसाब के रिज़्क अता फरमाता है, बगैर शुमार के रब अपनी रहमत से अता फरमाता है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये जवाब सुना तो आप बड़े जो गए वो यूं हैरान भी हुए और आपके दिल में भी एक शौक पैदा हुआ, और वो शौक ये आपने एक तमन्ना जाहिर की कि मेरे यहां भी औलाद पैदा हो, बेटा पैदा हो। तो फिर आपने कुरान फरमाता है हुनालिका दुआ ज़करिया रब्बा, 98 साल हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र हो चुकी है और 98 साल की उम्र में आप उस मेहराब में खड़े होकर दुआ करते हैं और रब ताला इस मेहराब के जिक्र को स्पेशल कुरान में बयान फरमा रहा है कि वहां खड़े होकर उन्होंने दुआ की है। दुआ का अंदाज कुछ यूं था कि मेरे मौला इस मेहराब के अंदर बेमौसम का फल भी तू अता फरमाता है, सर्दी में गर्मी और गर्मी का फल भी इस मेहराब में आता है। अब बज़ाहिर मेरी भी औलाद वाली मौसम नहीं रही, वो उम्र भी चली गई, अब उम्र ढल चुकी, अब मेरी जौजा अहलिया बांझ हो चुकी है, 98 साल की उम्र खुद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की है मगर दुआ मांगी है। जब इस जगह अल्लाह की इस नेक बंदी वलिया के सदका रब यहां बेमौसम का फल देता है, अल्लाह तेरे खजानों में कमी नहीं, मुझे बेमौसम की तो औलाद भी अता फरमा देगा। मेरी उम्र नहीं है अभी औलाद वाली, लेकिन अता फरमा। कुरान कहता है हुनालिका दुआ ज़करिया रब्बा, जहां खड़े होकर दुआ मांगी, काल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, अल्लाह से दुआ मांगी और कहा ए मेरे रब मुझे अपने पास से सुथरी नेक औलाद अता फरमा, इन्नका समीउद दुआ, बेशक तू ही दुआ को कबूल फरमाने वाला, दुआ सुनने वाला है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ को कबूल फरमाया और फरिश्तों ने आपको खुशखबरी दी, ए ज़करिया
تمہیں مبارک ہو، اللہ نے دعا کو قبول فرمائی ہے، رب آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا اس عمر میں، نہ بیٹا عطا فرمائے، اور بیٹا بھی کیسا، ارشاد فرمایا وہ بیٹا بھی سید ہوگا، سردار ہوگا، اور وہ بیٹا اللہ اسے بھی نبوت عطا فرمائے گا، اور وہ بیٹا جس کا رب تعالی نے خود ہی نام یحییٰ منتخب فرما دیا ہے۔ تو یہ بیٹے کی بشارت ہی علماء نے لکھا دو چیزیں، ایک تو یہ پہلی بات، بچپن میں ہی بی بی مریم رحمت اللہ کی تعالی علیہ نے کلام کیا، بچپن میں آپ نے بھی کلام کیا، تو جب آپ بڑی عمر پر ہوئیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ ہونی تھی، تو آپ کی والدہ امید سے ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، تو جب آپ خود ہی جو ہے وہ ایسا سلسلہ ہوا تو ولادت ہوئی، تو جب ان کی ماں پر یہ الزام کوئی لگنے لگا تو انہوں نے کیا، فاشارت الی، خود کچھ نہ بولی، انہوں نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، اس بچے سے ہی پوچھو، تو وہ کہنے لگے ہم اس بچے سے پوچھیں، جھولے میں ہے جو، اس بچے سے ہم پوچھیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، قال انی عبد اللہ، آپ نے اس وقت یہ اعلان کیا میری ماں پر الزام نہ لگاؤ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے نبوت بھی عطا فرمائی ہے، کتاب بھی عطا فرمائی، والدہ وہ جو بچپن میں کلام کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ جنہوں نے بچپن کے اندر کلام کیا۔ دوسری بات یہ کہ جس جگہ کو نسبت اللہ کے کسی پیارے ولی سے ہو جائے، کہا کہ جہاں وہ اس مکان میں ٹھہرے اس جگہ کو وہ مقبول جگہ ہے، دعاؤں کی قبولیت وہاں ہوتی ہے، تو جس جگہ کو نسبت کسی پیارے سے ہوتی ہے وہاں اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور جس جگہ وہ پیارے خود صاحب مزار بن جائیں، جہاں ان کی تربت ہو، مزار ہو، جہاں ان کا جسم مبارک ہو، وہ بھی جگہ اللہ کے نزدیک بڑی قربت والی پیاری مبارک بن جاتی ہے، رب اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے۔ تو جب کوئی شخص ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں کوئی اللہ کے پیارے مدفون ہوں، تو وہاں جب دعا کی جاتی ہے رب تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اور وہ دعا کے اندر جو کلمات تھے، ربی حبلی من لدنک ذریتا طیبہ، اے اللہ ستھری اولاد عطا فرما، اولاد کے لیے جب بھی دعا مانگے، بڑے لوگ مانگتے رہتے ہیں بیٹا دے بیٹی دے، بے شک مانگے دعا، لیکن نیک اولاد کی دعا کرنا والد کی ذمہ داری ہے، اسے یہ مانگنا چاہیے، کہ یہی انبیاء کا طریقہ رہا، یہی اولیاء کا طریقہ، اپنی اولاد کو نیک رکھنے کی دعائیں، یہ بھی والد کی ڈیوٹیوں ذمہ داریوں میں اس کو سمجھنا چاہیے، کہ بسا اوقات اولاد کے حوالے سے شکایات ہی کرتے رہتے ہیں لیکن اس نسخے کو آزماتے نہیں ہیں، والد کی دعائیں، اور یاد رکھیں دعا ہو یا بد دعا ہو، اولاد کے حق میں یہ بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے اپنی اولادوں کو بد دعا نہیں دعا دیا کریں، غصے میں آ کر بھی بد دعا نہیں دعا دیا کریں، ارے یہ ہتھیار ہر ماں باپ کے پاس ہے، اس کو بھی آزمائیں، بلکہ ضرور آزمائیں، یقینی کیفیت کے ساتھ دعا مانگے، انشاءاللہ رب دلوں کو پھیرنے والا ہے، اگر اولاد نافرمان ہوئی رب اسے فرما بردار آپ کا بنا دے گا انشاءاللہ۔ تو اپنی اولاد کے لیے دعا جو ہے وہ کرتے ہیں، جو بے اولاد گئے نیک صالح اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے رہیں۔ یہاں یہ بات بھی پتہ چلی کہ یہ بولنا اللہ کے ولی بچپن میں کلام فرمائے یہ کرامت ہے، اور کرامت کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے، کرامت کا انکار کرنا، اللہ اپنے اولیاء سے ایسی چیزوں کو جو ہے وہ صادر فرماتا ہے، ان سے ظہور ہوتا ہے، تو یہ کرامات جو ہے وہ ان کا انکار کرنا سرے سے ماننا ہی نہیں، کیونکہ کرامت کا ثبوت تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، سرات کے ساتھ حضرت آصف بن برخیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو امتی نے کرامت کو جو ہے وہ تخت والے کو ظاہر فرمایا۔ اب پھر آگے جس جس سے، اب اس طرح کے معاملات یہ صرف ایک نہیں بلکہ کئی ایسے اللہ والے ہیں کہ بچپن سے ہی رب نے انہیں یہ مقام اور مرتبہ دیا۔ ان میں ہمارے مشہور بزرگ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، یہ بھی وہ بزرگ ہیں بچپن سے ہی جن کی ولایت جو ہے وہ مشہور ہوئی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ نیک گھرانے میں آنکھ کھولی، آپ کے والد گرامی قاضی سلیمان عالم دین تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ نیک نمازی تہجد گزار، اور ساتھ ساتھ وہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی ولیاں تھی۔ ایک دفعہ 29 شعبان کو آسمان پر بادل تھا، لوگ جو گئے وہ ابدال کے پاس گئے اور اسی قصبہ میں رہتے تھے، ان سے جا کر جو گئے اور رمضان کے بارے میں پوچھا تو وہ پتا کیا کہنے لگے۔ انہوں نے کہا وقت کا ابدال، یہ بھی ولایت کا ایک درجہ ہے، ان کے بارے میں جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آج رات قاضی سلیمان کہ ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو کہ اس وقت کا کتب کے درجے پر ہوگا، کتب وقت کا، اگر وہ بچہ دودھ نہ پیے تو تم بھی کل روزے کی جو ہے وہ نیت پختہ کر لینا ورنہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی رات قاضی سلیمان آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاں نیک بخت لڑکے کی ولادت ہوئی، اور لوگوں نے جب صبح معلوم کیا تو انہوں نے بتایا بیٹے نے آج دن میں دودھ نہیں پیا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ کی تعالی علیہ، آپ بھی ان میں سے گئے کہ جن کی بچپن سے ہی ولایت جو گئے وہ اس کو شہرت بھی ہوئی اور مشہور بھی آپ ہوئے اس ولایت کے ساتھ، اور شروع شروع میں بھی، اور ہم کئی مرتبہ آپ کے بارے میں گنج شکر، آپ کی والدہ تربیت بھی ایسی فرماتی تھی، آپ بچے کو جو گئے وہ نماز کی طرف شوق دلانے میں اور نمازیں خود بھی تہجد پڑھتی تھی۔ ماں باپ کا نیک ہونا یہ بہت بڑا کردار بچوں کے اندر بھی اثر آتا ہے، نیک ہوں یا بد ہوں دونوں اعتبار سے اثرات بچوں کی جو گئے وہ طبیعتوں پر آتے ہیں۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ آپ کو بڑا ایک میٹھا میٹھا، جسے کہنا بچوں کو شوق دلانے کے لیے یا لالچ دلانے کے لیے، ہاں بھائی یہ کرو تمہیں یہ دوں گا، گھر میں ہم بچوں کو کہتے رہتے ہیں، لیکن افسوس ہے ہم یہ سارے نسخے جو ہے دنیاوی کاموں پہ آزماتے ہیں۔ ٹیوشن پہ ٹائم پہ چلے جاؤ 10 روپے لے لو، اسکول ٹائم پہ چلے جاؤ اتنے لے لو، جب صبح اسکول بھیجنا ہے تو اس وقت بچے کو بڑا آسان طریقے سے فریش کر کے بھیجنا ہے، بالکل اچھے لباس کپڑے سب کچھ، لیکن یہی بچہ اگر مدرسے میں جا رہا ہو تو شاید والدین اتنی توجہ سے نہیں، بلکہ اور الٹا ایک دو تھپڑ بھی ماریں گے تاکہ روتا روتا جائے، تاکہ کچھ راستے میں طبیعت خراب کرے، باقی قاری صاحب کی کرے اور قاری صاحب اس کی کرے، بس پھر پڑھ لیا۔ اسکول کے حوالے سے ہم اتنے سنجیدہ، دین کے حوالے سے نہیں۔ بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ، آپ اس وقت شکر بڑی پسند کی جاتی تھی، آج کے حساب سے آپ کہیں چاکلیٹ، بچے کہیں ہاں بھی چاکلیٹ کا لالچ دیں آپ نماز پڑھو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ لالچ دے کر جو ہے کبھی دین کے حوالے سے بھی دے کر دیکھیں، آپ شکر دیا کرتی تھی، نماز پڑھو یہ ملے گا، آپ یہ نفل پڑھو یہ مل جائیں گے، آپ یہ جو گئے وہ، اور کہتی کیا مسلح کے نیچے رکھ کر بس آپ نماز پڑھو پھر مسلح اٹھاؤ، اور خود شکر رکھا کرتی تھی، خود ہی رکھتی تھی۔ تو وہ اٹھاتے، بچے کو شوق پیدا ہوا، ایک دن والدہ گھر پہ نہیں تھی لیکن نماز کا وقت ہے تو آپ بچپن میں ہی آپ نے اٹھایا مسلح اور بچھا دیا اور نماز شروع کر دی، اور مسلح بعد میں اٹھانا ہے دیکھنا ہے کہ اب شکر جو ہے وہ تو اپنے ذہن میں یہی ہے کہ شکر ملے گی، نماز پڑھنا شروع کر، आपकी वालदा मोहतरमा जो है वो बेचैन हो गई कि कहीं ऐसा ना हो आज मेरे बेटे को अगर शक्कर ना मिली तो कहीं ऐसा ना उसका दिल जो है वो इस तरफ से जो है वो हट जाए, अब आइंदा जो है वो नमाज की तरफ से दिल जो है वो हट जाए। एक दिल में एक खौफ पैदा हुआ, परेशान हुई। नमाज का टाइम जो है वो बेटे ने घर पे मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी, आप जल्दी अपने घर पे पहुंची, सामने बेटा है, आपने पूछा नमाज, जी हाँ अम्मी जान नमाज पढ़ ली। लेकिन साथ कहते हैं अम्मा आज तो आपका दिल जो है वो गोया के बाहर आने को कि आज ये अभी मुझे यही शिकवा शायद करेंगे कि आज शक्कर नहीं मिली। लेकिन बाबा फरीद कहते हैं कि अम्मा जान आज जो शक्कर मिली है उसका लुत्फ ही अंदाज नराला था, गागा था, उसका जायका ही बड़ा नराला था जो आज मुझे शक्कर मिली। आपकी माँ ने सजदा शुक्र अल्लाह की बारगाह में अदा किया। तो ये है ये माएं जो अपने बच्चों की गोद में ऐसी तरबियत करती है, जो बच्चों की ऐसी तरबियत जो है वो दीनी तौर पर उनको जो है वो दीन की तरफ रागिब करने के लिए। तो ये हमें सीखना चाहिए इनकी सीरत से, और ये नुस्खे अपने घरों में भी जो है वो ये आजमाने चाहिए बच्चों को दीन की तरफ लाने के लिए। कुछ ना कुछ जायज तरीके वाले, ये नहीं कि अब तुम नमाज पढ़ लो इसके बाद तुम्हें चार गेमें खिला दूंगा, अब तुम ये कर दो इसके बाद चार जो है वो उल्टे काम, नहीं, एक सीधा हो और तीन काम जो है वो उसको उल्टे सिखा दिए तो फिर फायदा नहीं। जायज तरीके के मुताबिक अपने बच्चों को खुश भी करते रहें, उनको दीन की तरफ जो है वो रागिब भी रखें। हुजूर गौसे आदम रदी अल्लाह तआला नो आपकी ये हिकायत हम इतना सुनते हैं कि आप रहमतुल्लाह तआला ले दीन के लिए जब घर से निकले और कोई भी याद रखें अल्लाह के जो वली हैं विलायत के लिए, हर पीर के लिए आलिम होना शर्त, और हर पीर मर्तबा विलायत पर हो ये भी जरूरी नहीं, लेकिन शरायत के अंदर आलिम होना, क्योंकि विलायत का मर्तबा वो है कि अल्लाह उसे ही ये अता फरमाता है जिसके सीने में इल्म का नूर हो, अल्लाह उसे दर्जा विलायत अता फरमाता है। जाहिल को रब ताला अपना दोस्त नहीं फरमाता, जाहिल को महबूब नहीं बनाता, जाहिल को वली नहीं बनाता। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला ले फरमाते हैं अगर किसी के साथ रब ताला उसे दर्जा विलायत अता फरमाना चाहे और उसके पास इल्म ना हो, हाँ ये अलग बात है कि रब अपनी रहमत से उसे इल्मे लदूनी अता फरमा दे, लेकिन इल्म देता है और फिर उसके साथ उसे विलायत अता फरमाते। तो बुजुर्गों की सीरत है, दीन का इल्म पढ़े बगैर आप सीरत पढ़ के देखिए, बाबा फरीद अलैह रहमा की पढ़ें या हुजूर गौसे आजम की पढ़ें या दाता अली हजवेरी के पढ़ें या इमाम आजम अबू हनीफा की पढ़ें, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, आप इनकी सीरत किसी भी बुजुर्ग की उठाकर देखें तो उनकी जिंदगी के अंदर अहम तरीन बाब ये होगा कि जब इतनी उम्र को पहुंचे तो फिर मकतब जाना शुरू किया, इस तकर आपने कुरान पढ़ा, फिर जब इस उम्र को पहुंचे तो बाकायदा दीन पढ़ने के लिए उन्होंने सफर शुरू किए, दीगर असफार शुरू किए। आप किसी भी बुजुर्ग के हवाले से यह उठाकर देखें तो साथ आलम दीन होना, दीन का इल्म रखना, यह उनके अंदर एक शौक था, उनके मां बाप के अंदर यह जज्बा होता था। आज मुझे और आपको भी यह नियत करनी है कि इंशाल्लाह हम भी अपने बच्चों को उलमा बनाएंगे इंशाल्लाह, आलम दीन। और जब बच्चों को आलम दीन बनाना है खुद इल्म से दूर नहीं रहना। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कितने जराए गए, किबला शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम अलालिया का मदनी मुजाकरा है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह चंद घंटों की निशिस्त होती है और कितने इन पर मुश्तमिल सवालात के जवाबात जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें हासिल हो जाते हैं। तो आज ये भी नियत करें इंशाल्लाह हम खुद यानी बड़े भी इल्म सीखेंगे, बच्चों को तो आलिम बनाएंगे खुद भी सीखेंगे, और नियत कीजिए इंशाल्लाह मदनी मुजाकरे में हम शिरकत करते रहेंगे इंशाल्लाह। याद रखिए विलायत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक आता है, और ये बाज़ुकात हमारा जो ज़हन ये बन जाता है कि जो जद्दी पुश्ती औलिया में से हुए वो बली बन गए या बहुत ज्यादा इबादात की अब मर्तबा विलायत पे पहुंचे, मैं और आप कोई इस तरह की कोशिश ही ना करें, ना ना विलायत अल्लाह की अता है, लेकिन देता उसे है, एक जरिया बना देता है। जो नेक अमलों की तरफ आता है रब उसे अपना वली बना लेता है। और खुद हदीसों में इरशाद फरमाया, बंदा पहले फराइज के जरिए रब का कुर्ब हासिल करता है, फिर वो नवाफिल के जरिए रब का कुर्ब हासिल करता रहता है। हदीस कुदसी में है, अल्लाह फरमाता है जब बंदा ये अमल जारी रखता है और मुस्तकिल रखता है, रब ताला फरमाता है मैं खुद उस बंदे को अपना महबूब बना लेता हूं। और अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है, फरमाया जब रब किसी से मोहब्बत करता है तो फिर अल्लाह ताला निदा देता है और पुकारता है, किसे? जिब्रील अमीन को बुलाता है। और जिब्रील अमीन से अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्रील मैं फुलां बंदे से मोहब्बत करता हूं, तू भी उससे मोहब्बत कर। हजरत जिब्रील उससे मोहब्बत करते हैं। फिर पता क्या कहा, फरमाया आसमानों में ऐलान कर, पूरे आसमानों में ऐलान होता है, ऐ सारे फरिश्तों सुन लो, अल्लाह फुला बंदे से मोहब्बत करता है। जिब्रील कहते हैं मैं भी मोहब्बत करता हूं, फरिश्तों तुम भी उससे मोहब्बत करो। और कहा सुम्मा युदाउल कबूल फिल अर्द, फिर उस बंदे की कबूलियत को अल्लाह जमीन में रख देता है, लोगों के दिल खींचे चले जाते हैं उसकी तरफ। आज मैंने, आपने, हमारे अबाऊ अजदाद ने गौसे पाक को नहीं देखा, इन बुजुर्गों को नहीं देखा, हमारे ऊपर तक जो है ये सदियां गुजर गई, ये दुनिया से पर्दा फरमाए हुए, लेकिन एक ऐसा रूहानी कनेक्शन है और वो ऐलान है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह उशाकान रसूल और उशाकान गौसे आजम, हमारे बच्चों बच्चों के दिलों में गौसे पाक की मोहब्बत है, हमारे बच्चों बच्चों के दिलों में दाता अली हजवेरी की मोहब्बत है, बाबा फरीदुद्दीन की मोहब्बत है। ये क्या है? ये वो रूहानी ऐलान है कि जमीन के अंदर अल्लाह उनकी कबूलियत को रख देता है। मुझे आपको ऐसे आमाल अपनाने गए कि अल्लाह अपना हमें भी महबूब बंदा बना ले, हम अल्लाह के प्यारे बन जाएं, अल्लाह के दोस्त बन जाएं। और ये बुजुर्गों की सीरत रही है, बाद वो बुजुर्ग जो अपनी जिंदगी में बचपन से विलायत पर, जिनकी विलायत मशहूर हुई, लेकिन बाद ऐसे गए, वो बचपन उनका नहीं, जवानी नहीं, लेकिन आगे जाकर बचपन और उनका माजी अगर देखें तो वो कोई अच्छा नहीं गुजरा होता। मैं ऐसे तमाम के लिए ये पैगाम छोड़कर आज की इस इज्तिमा से ये हम मदनी फूल लेकर यहां से जाएं कि वो लोग जो पहले माजी जिनका बेहतर ना गुजरा, लेकिन जब उन्होंने अजम कर लिया और कोई ऐसा नेक अमल किया, अल्लाह को उनका वो नेक अमल इतना पसंद आया, वो चाहे हबीब आजमी हो, वो चाहे फुजैल बिन अयाज हो, वो उनमें बिशर हाफी हो, अरे इनका माजी अगर आप देखें तो कोई शराब खाना चला रहा है, कोई सूद के अंदर है, कोई जो है वो डाका जनी के अंदर है, बड़े बड़े गुनाहों में है, लेकिन जब रब की रहमत की नजर पड़ गई और उन्होंने कोई ऐसा अमल कर लिया, फुज़ैल बिन अय्याज़ पर किसी अल्लाह वाले की नजर पड़ी तो गुनाह से सच्ची तौबा की, बिशर हाफी जो जा रहे अल्लाह का नाम जमीन से उठाकर उसे मुअत्तर किया, अदब किया है, और रब ताला ने कैसी बशारत अता फरमा दी कि बिशर हाफी तूने मेरे नाम को मुअत्तर किया है, हमने तेरे दिल को मुअत्तर कर दिया है। फिर दिल में शराब की नफरत पैदा हो गई, फिर वही बिशर हाफी हैं, अल्लाह के वली बने हैं कि जब बगदाद में चला करते थे तो लोगों ने, उलमा ने, वलियों ने बयान फरमाया कि आप बिशर हाफी नंगे पांव चलते थे और बगदाद की गलियों में, रोड पर, सड़क पर कोई बकरी भी जो है वो मेंगनियां नहीं करती थी, कोई जानवर गोबर लीद नहीं करता था, इसलिए कि अल्लाह के वली नंगे पांव चलते हैं, कहीं अल्लाह के उन वली के पांव जो है वो नापाक ना हो जाए, निजासत ना लग जाए। वो जानवरों के दिलों में भी फिर अपने वलियों का अदब डाल देता है। तो कब? जवानी में तौबा की। आज के इस मुबारक इज्तिमा से अपने गुनाहों से सिद्ध के दिल से तौबा करते हुए यहां से उठें कि इंशाल्लाह आज के बाद हम शरीयत मुताहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह। नमाजों का पैगाम हम सुनते गए, गौसे पाक रजी अल्लाह को ताला ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, सुनते हैं सुबहान अल्लाह की सदा लगाते गए। अरे मेरे भाइयों, मुझे अपने आप से और आप सब से, हम अपने आप से ये सवाल करें,
कहीं ऐसा तो नहीं हमारे कभी 40-40 दिन गुजर जाएं, फजर की जमातें जा रही हो, फजर की नमाज माज़ल्लाह कज़ा हो रही हो।
सीरत पर अमल ये गए, आज ये नियत करके जाएं इंशाअल्लाह अज़ीज़,
अब हमारी फजर की जमात भी नहीं जाएंगी इंशाअल्लाह। रब्बे काबा हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।